ओम शांति। हमारा विश्वास है कि आप सभी जो इस कॉन्फ्रेंस में सम्मिलित हुए हैं अवश्य स्वयं को यहां एनकरेज्ड इंस्पायर्ड फील कर रहे होंगे। एक दिन दो दिन होने के बाद ऐसा लगता है कि ये जीवन कितना सुंदर है, ये जीवन कितना अच्छा है। ये जो कॉन्फ्रेंस का नाम है एक्सप्लोरिंग न्यू होराइजन, आज अगर हम जीवन में देखें तो नया 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 कुछ आता ही रहता है और उस नए को अपनाने के लिए हमें रिवाइलेंस की आवश्यकता होती है। डू यू थिंक सो? आपको लगता है? आज हम इस विषय पर थोड़े से अपने विचार शेयर करेंगे। ये विषय बहुत महत्वपूर्ण है।
उसे डरकर नौका पार नहीं।
ये जो विषय है ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। हम जानते हैं कि बहुत सारे जीवन के अंदर उतार चढ़ाव आते रहते हैं। कभी हम प्रयास करते हैं और प्रयास करते हैं तो जो हमें रिजल्ट मिलना चाहिए वो हमें दिखाई नहीं देता है, और कभी थोड़ा सा प्रयास करने के बाद सफलता हमारे हाथ आ जाती है। लेकिन बात यह है कि जब बहुत कोशिश करने के बावजूद भी हमें जो हम चाहते हैं परिणाम, वो हमें परिणाम नहीं मिलता है, तो होता क्या है? जीवन के अंदर कभी कभी थोड़ी सी निराशा, थोड़ी सी मायूसी आने लगती है। कभी कभी तो हिम्मतहीन महसूस करते हैं अपने आप को। इसीलिए मुझे ये बात याद आती है, आप ध्यान से सुनिएगा।
कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में सांस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी।
क्या कहेंगे बोलिए सभी, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। सिर्फ हार नहीं होती, नहीं, कभी हार नहीं होती। और ऐसे बहुत सारे आपको एग्जाम्पल्स हिस्ट्री में मिलेंगे, जिन्होंने साइंटिफिक इन्वेंशंस की हैं वहां मिलेंगे, बिजनेस फील्ड में मिलेंगे, बहुत से आपको एग्जाम्पल्स मिलेंगे। लेकिन हमें इसे प्रैक्टिकल जीवन के अंदर अप्लाई करना है, क्योंकि आज हम जिस दुनिया में रह रहे हैं वो दुनिया कैसी है? नया नया, सब कुछ नया। कल भी आप सुन रहे थे, आप देखिए जो हमारा एजुकेशन सिस्टम था, आप में से जो कोई यहां पर 40+ 50+ होंगे तो वो जानते हैं जब हमारा जो एजुकेशन सिस्टम था वो एजुकेशन सिस्टम अब सारा बदल गया, राइट? अच्छा, जो हम पहले साधन यूज करते थे, चाहे वो टेलीफोन हो, चाहे वो कारें हो, या और भी जो भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हो, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हो, वो भी सब बदल गए। और न केवल इलेक्ट्रॉनिकल या न केवल टेक्नोलॉजी में बदलाव आ रहा है और आया है, लेकिन आप देखिए हमारे जीवन में भी बदलाव आ गया है। रहन सहन में भी बदलाव आ रहा है। कुछ समय पहले लोग मिलेट्स की बात भी नहीं करते थे, आज सभी जगह मिलेट मिलेट की अभी भारत में बात हो रही है। एम आई राइट? ठीक है। न केवल इतना, आप देखिए जो बहुत प्रकार के जो फूड्स हैं जिसके हम यूज टू हो गए थे, अभी जब हमें समझ आई तो उसके अंदर कुछ चेंज आ रहा है। तो ये बदलाव आता ही रहता है, आता ही रहता है। और उस जब बदलाव को हम एडॉप्ट करना चाहते हैं, जब उस परिवर्तन के दौर से हम निकलते हैं, तो क्या होता है, हमें कुछ अपने में चेंज लाना होता है। उसको स्वीकार करने के लिए, उसको सीखने के लिए हमें कुछ एफर्ट्स करने पड़ते हैं। लेकिन होता क्या है, आमतौर से क्या होता है, सम पीपल फेसिंग एडवर्स कंडीशंस मैनेज टू रिस्पॉन्ड इन ए पॉजिटिव पर्पसफुल पावरफुल मैनर। कुछ तो लोग ऐसे हैं जो भी बदलाव आया उसको बहुत पॉजिटिव एंगल से देखते हैं, उसको पॉजिटिव आउटलुक से देखते हैं, उसमें से कुछ पर्पस निकालने की कोशिश करते हैं, अपने आप को सशक्त करने की कोशिश करते हैं, अपने आप को दे ट्राई टू अडेप्ट टू दैट चेंज। और इसीलिए क्या होता है, वो सक्सेस की ओर जाते हैं, उनको सफलता मिलती है, वो जीवन को एंजॉय करते हैं। वेयर एज कुछ ऐसे भी लोग मिलेंगे, उन लोगों की भी एक कैटेगरी है, और वो कौन से हैं, जब इस तरह के बदलाव संसार के अंदर देखते हैं, जीवन में देखते हैं, अपनी सराउंडिंग्स में देखते हैं, लोगों के व्यवहार में देखते हैं, सबसे बड़ी बात है आज जो चेंज आया है वो मनुष्य के बिहेवियर में चेंज आया है। देखिए, भारत जो एक पारिवारिक सिस्टम से चलता रहा, आज जो 3-4 लोगों का परिवार है, उस परिवार में भी वो पारिवारिक भावना नहीं रही जो पहले हुआ करते थे। मैं समझती हूं आप लोग इस बात से सहमत होंगे। तो वो क्या होता है, जब वो देखते हैं ये सब नहीं है, व्यवहार में बदलाव आ गया, लोगों के बात करने के ढंग में बदलाव आ गया, उनकी भाषा बदल गई, तो फिर वो नेगेटिवली रिएक्ट करते हैं। और जहां नेगेटिविटी होगी वहां थॉट प्रोसेस बहुत फास्ट चलता है, और उससे हमारी एनर्जी डिप्लीट होती है, क्योंकि थॉट एनर्जी है और थॉट प्रोसेस बहुत फास्ट चल रहा है। क्यों, क्या, उसमें कई प्रकार के वेस्ट थॉट्स आ जाते हैं, बहुत सारे वाइज है, ये क्यों हुआ, क्या, कैसे हुआ, नहीं होना चाहिए था। एंड देन व्हेन द एनर्जी गेट्स डिप्लीटेड तो हम अपने आप को कमजोर महसूस करते हैं, और हमें ऐसे लगता है अब मेरे जीवन में रहा ही क्या है, मुझे करना ही क्या है, अब मेरा जीने का अर्थ क्या है, आई फील लाइफ एज यू नो एमलेस, जैसे जीवन में कोई एम ही नहीं रहा। और इसीलिए आप देखिए, आप सभी इस बात को जानते हैं, 21वीं सदी में आज डिप्रेशंस कितने बढ़ते जा रहे हैं, और जो भी मन से संबंधित बीमारियां हैं वो बढ़ती जा रही हैं। और न केवल इतना, आउट ऑफ डिप्रेशन पीपल कमिट सुसाइड, ये भी हो रहा है। अब आप देखिए, ये दो डिफरेंट टाइप ऑफ रेस्पॉन्ड क्यों है। सिचुएशन तो हर एक के लिए वो एक जैसी है, जो बदलाव आ रहे हैं, अगर मोबाइल बदली हुआ, अगर आप देखिए स्मार्टफोन आया या उसमें भी बहुत कुछ चीजें आई, तो वो सबके लिए आया ना, सिर्फ एक व्यक्ति के लिए तो नहीं आया। पहले पीसी हुआ करते थे, लैपटॉप आए, लैपटॉप से और थोड़ा सा छोटा हुआ, अभी तो मोबाइल में ही सब कुछ काम हो जाता है। वो जो बदलाव आया वो सबके लिए बदलाव आया, लेकिन कुछ लोगों का जो रेस्पॉन्ड है वो पॉजिटिव है, और कुछ लोगों का जो रिएक्शन है वो नेगेटिव है. व्हाट मेक्स देम डिफरेंट, क्यों ये अलग है? उसका मूल कारण है डिफरेंस इन क्वालिटीज विद विच दे डील विद द एडवर्स सिचुएशन. उनके अंदर कौन सी क्वालिटीज है? देखिए, जो पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड करते हैं वो कुछ, उनके अंदर कुछ बेसिक वैल्यूज होती हैं, उन्होंने अपने परिवार से या अपने आसपास से या अपने एजुकेशन से सीखी हुई होती हैं, उनको थोड़ा थोड़ा अप्लाई करते हैं और पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड करते हैं. और कुछ लोग ऐसे हैं वैल्यूज की ओर ध्यान ही नहीं जाता है और उसीलिए उनके रिएक्शंस वो जो है वो नेगेटिव होते हैं. सो व्हाट शुड वी डू? लेट मी शो व्हाट टाइप ऑफ चैलेंजेस कैन बी. देखिए, चैलेंजेस तो हर एक के पास आएंगे, जीवन चैलेंज के बगैर है ही नहीं. चुनौतियां आनी ही आनी है और हर प्रकार की चुनौतियां हो सकती हैं. वो चुनौतियां मेरे अपने से भी हो सकती हैं, अपने से हो सकती है, हो सकती है मेरे अपने आप से हो सकती है, हो सकती है. यस, यू एग्री, हो सकती है ना, अपने से, दूसरों से भी हो सकती है, मेरे परिवार से भी हो सकती है, जो चेंजेस आ रहे हैं उससे भी हो सकती है. और वो चुनौतियां क्या क्या हो सकती हैं? देखिए, एक नॉर्मल चेंजेस इन अवर लाइव्स, हमारे जीवन के अंदर कुछ कुछ जो परिवर्तन आते हैं, जैसे देखिए, जब हम लोग पढ़ते हैं, एजुकेशन लेते हैं, जॉब तक पहुंचते हैं, पहली बार जब जॉब ज्वाइन करनी होती है, कभी किसी से मिले नहीं होते हैं, थोड़ा थोड़ा अंदर में आता है कि कैसे जाएंगे, क्या करेंगे, कौन मिलेगा, वो भी एक चैलेंज है. इसी प्रकार शिफ्टिंग होम, घर को बदलना है, कईयों को बड़ा स्ट्रेस होता है, घर चेंज करना है, कैसे करेंगे, क्या करेंगे. देन बर्थ ऑफ ए चाइल्ड, घर में बच्चे का नया जन्म हो गया. आजकल तो माताओं बहनों को बड़ा इसका भी टेंशन होता है, ये करना है, वो करना है, वो भी एक चैलेंज जैसा बन जाता है. देन बुढ़ापा, मुझे लगता है इस 21वीं सदी में बुढ़ापा एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि स्वीकार नहीं करते आजकल के फैमिली में बच्चे जो है अपने ओल्डर वंस को स्वीकार नहीं करने को तैयार होते हैं. इसीलिए भारत में भी ओल्ड होम्स का रिवाज हो गया है, ज्यादा से ज्यादा ओल्ड होम्स बनते जा रहे हैं, कोई देखरेख करने वाला नहीं है, तो ये भी चैलेंज है. अपार्ट फ्रॉम दैट, अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स, हमने कभी सोचा ही नहीं था, अचानक हमारे किसी प्रियजन की मृत्यु हो गई. अरे, कल तो मैंने उसको देखा था और आज वो है नहीं, हमें ऐसा लगता है. देन लॉस ऑफ जॉब, देखिए इस ये जो अभी तो पहले डिजिटल का एज था ना, अभी तो डिजिटलाइजेशन हुआ सब कुछ, अभी तो एआई आ गया. और एआई आने से क्या होगा वो तो आपको आने वाला फ्यूचर बताएगा, या जो लोग इस फील्ड में हैं वो अच्छी तरह से जानते हैं. और धीरे धीरे क्या होता है, जो मनुष्य है वो कम होते जा रहे हैं जॉब्स में, सारा कार्य जो है मशीनें ही कर रही हैं. अब अचानक जॉब नहीं होता लोगों के पास. मुझे याद है यहां आने से पहले, मैं आपको बताती हूँ, तीन ये बात है 10 तारीख की, तो हमें कुछ सामान लेना था कॉन्फ्रेंस से कनेक्टेड. तो जो जिस जहां से भेजा गया वो पोर्टल के थ्रू भेजा गया, तो वो जो पोर्टल मेरे पास आया तो मैं उसको देखती रही पहले, तो मुझे लगा कि ये पोर्टल है. ही वॉज सच ए यंग चैप, एकदम यंग लड़का, और ऐसे दिखने में भी लगता था कि वेल एजुकेटेड होगा. मैंने उसे कुछ नहीं कहा, जो मुझे इसे देना करना था वो दे दिया. लेकिन मुझे ऐसा लगा कि आज वो स्थिति आ गई है कि वेल एजुकेटेड लोगों को भी शायद ये कार्य करना पड़ रहा है अपने जीवन को चलाने के लिए. राइट? तो जब जॉब में है और अचानक मालूम पड़ता है कि आपको जॉब से हटा दिया गया है, कितने लोग ऐसे हैं, तो बड़ा चैलेंज आता है अपने सामने। इसी प्रकार सीवियर सिकनेस अचानक मालूम पड़ जाए, कोई बीमारी ऐसी है, देन और क्या हो सकते हैं चैलेंजेस, वॉयलेंस। आज डे बाय डे वॉयलेंस बढ़ती जा रही है, केवल लिटरल वॉयलेंस नहीं लेकिन शब्दों के द्वारा भी वॉयलेंस। मनुष्य क्रोध में आकर क्या नहीं बोलता है, और सोशल फ्रेंड्स जो आज बदलाव आया है, तो हम देखते हैं ऐसे बहुत सारी और भी चीजें हो सकते हैं। अगर मैं आपसे एक एक से पूछूं तो मैं समझती एक लंबी लिस्ट हमारे सामने निकल आएगी, लेकिन इन सबको हमें पार करना है। हम चैलेंजेस को देखकर हाथ पे हाथ धरकर नहीं बैठ सकते, उससे काम होगा क्या? हाथ पर हाथ रखकर बैठेंगे या सोचते ही रहेंगे ये क्यों आया, ये नहीं आना चाहिए था, तो कुछ होगा उससे? होगा क्या उससे? तो व्हाट डू वी रिक्वायर? हमें चाहिए रेजिलियंस। क्या चाहिए हमें? रेजिलियंस। व्हाट इज रेजिलियंस? आप में से कोई बता सकता है व्हाट इज रेजिलियंस? हम किसको कहेंगे? बेबी आप स्लाइड देख के भी थोड़ा बता सकते हैं व्हाट इज रेजिलियंस? आप क्या समझते हैं? अगर हम इसको डिस्क्राइब करें तो बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन मैं बहुत सिंपल शब्दों में आपके सामने इस बात को एक्सप्लेन करना चाहती हूं। इज समथिंग बाउंसिंग बैक। व्हाट इज बाउंसिंग बैक? एक आपको स्टोरी शेयर करना चाहूंगी। एक छोटा सा पंछी, मे बी लाइक ए हमिंग बर्ड, एक बार वो तूफान की लपेट में आ गया। बहुत तेज आंधी जैसा तूफान चल रहा था और बहुत तेज बारिश हो गई। जहां पर वो बैठा था वहां से वो उस आंधी के आने से वो उस ब्रांच से वो गिर गया और बारिश हुई। वो उड़ने लगा, उड़ते 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 वो बहुत उससे स्ट्रगल कर रहा था बारिश से तूफान से। उस स्ट्रगल करने में उसके काफी सारे पंख जो है वो टूट टूट कर गिर गए, और अल्टीमेटली करते करते एक ऐसी जगह पहुंचा जहां बहुत थोड़े से वृक्ष थे, बहुत कुछ थोड़े से वहां पर पेड़ थे, उनके पतली पतली सी ब्रांचेस थे, थोड़े से पौधे वहां थे, और वो जाके एक पेड़ की पतली सी ब्रांच के ऊपर जाके उसने अपने पांव रख दिए और उसको बहुत होल्ड कर लिया जोर से उस ब्रांच को। तूफान अभी थमा नहीं था लेकिन वो स्ट्रगल कर रहा था, वो पकड़े हुआ था, उड़ सकता नहीं था, उसके बहुत सारे पंख टूट चुके थे। तो उसने उस ब्रांच को पकड़ के रखा और धीरे 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 जैसे जैसे वो इधर उधर देख रहा था उसका ध्यान गया कि नीचे जो सॉइल थी, नीचे जो मिट्टी थी वो सॉफ्ट हो गई थी। तो वो धीरे धीरे उस ब्रांच से उतर के उस सॉफ्ट मिट्टी में जाकर बैठ गया, और जहां उसको लगा जैसे सोलेस, जैसे उसको एक कंफर्ट वहां पर मिल रहा है, और वहां जाकर वो बैठ गया। बैठने के बाद उसने अपने आप को इधर उधर देखते हुए वहां बैठा, अपने आप को सस्टेन करना शुरू किया। समय अनुसार उसके थोड़े थोड़े पंख निकलने शुरू हुए। उसने हिम्मत नहीं हारी, उसके थोड़े थोड़े पंख निकलने शुरू हुए, और आफ्टर सम टाइम क्या हुआ, वो एकदम वहां से बाहर निकला, बट नाउ एज ए स्ट्रॉन्गर बर्ड देन बिफोर। पहले से वो ज्यादा मजबूत था। आप इस स्टोरी से क्या समझते हैं? देखिए, ये जो तूफान है, ये जो बहुत तेज बारिश है, दे आर लाइक चैलेंजेस। ये हमारी जीवन है, मनुष्य जीवन। जीवन के अंदर ऐसे कई तूफान रूपी चुनौतियां हमारे सामने आती हैं, लेकिन उसने क्या किया, वो जाकर जो एक पतला सा कोई हल्का सा सपोर्ट, वो जो पतली सी ब्रांच है, एक उसका अंदर का कहिए विश्वास, तो उसने उस ब्रांच को पकड़ के रखा और उसके बाद वो सॉइल में चला गया। वो सॉइल क्या है, वो मिट्टी क्या है, वो सॉफ्ट मिट्टी क्या है, हमारे अंदर वो इनर स्ट्रेंथ जो हमारे अंदर है, और फिर उस अंदर की शक्ति से उस सॉइल में बैठे बैठे उसने अपने आप को सस्टेन किया, और सस्टेन करने के बाद जब वो बाहर निकला, उसके पंख आ गए, तो वो अब एक ज्यादा मजबूत पंछी के रूप में बाहर आया। ऐसे ही हम मनुष्यों में, वो एक आंतरिक शक्ति है, उस शक्ति को पहचानना, उस शक्ति को जानना। एंड रेजिलियंस इज नोइंग दैट पावर, नोइंग दैट स्ट्रेंथ, एंड देन बाउंसिंग बैक विद ग्रेस एंड डिग्निटी, फेसिंग द चैलेंजेस विद ग्रेस एंड डिग्निटी। ये है रेजिलियंस, जिसके द्वारा क्या होता है, हम चैलेंजेस को पार करके हम एक बहुत और ज्यादा बेहतर इंसान के रूप में बाहर आते हैं। आप में से किसी को ऐसा अनुभव है? है किसी को ऐसा अनुभव? आप तो ठीक, और किसी को अनुभव है? जो आप यहां से डिफरेंट फील्ड से आए हुए हैं, जो प्रोफेशनल में अपने अपने प्रोफेशन में है, किसी को ऐसा अनुभव है? कोई आपके पास इस तरह का चैलेंज आया और आपने अपने मन के विश्वास से उस चैलेंज को क्रॉस किया, और आपको बाद में ये लगा कि मुझे सचमुच एक सीखने के लिए लेसन मिला? है कोई ऐसा? है, एक ने हाथ खड़ा किया है, दो, तीन, ठीक है। आपसे अगर समय होगा हम बाद में पूछते हैं, हम इस सेशन को आगे चलाते हैं। मैं इसी बात को थोड़ा सा और आगे स्पष्ट करना चाहूंगी। सी, ये जो रेजिलियंस है, इट इज अ स्किल, ये कौशल है, जिसको हम अपने प्रयास से, अपने पुरुषार्थ से सीख सकते हैं। जरूरी नहीं है कि वो रेजिलियंस हमारे अंदर फुल होगा, नॉट नेसेसरी, लेकिन ये 100% है कि हर एक के अंदर एक आंतरिक शक्ति है। आप वो सेशंस कर चुके हैं इसलिए मैं उसको दोहराऊंगी नहीं। और वो आंतरिक शक्ति जो है वो सुषुप्त अवस्था में पड़ी है, वो अनकॉन्शियस लेवल पर है, वो लेटेंट फॉर्म में है, वो इमर्ज फॉर्म में नहीं है। उसे मुझे इमर्ज करना है, उसे ऊपर लाना है, और वो तब होगा जब हम उसके लिए कुछ प्रयास करेंगे, हम कुछ उसके अंदर अपना एफर्ट डालेंगे कि तब होगा। ये बहुत बड़ी स्किल है आज के इस युग के अंदर, आज के समय में अगर ये स्किल किसी के पास आ जाए तो वो कुछ भी कर सकता है। Then, it's a mindset. ये मानसिकता है हमारी। इसलिए आप पहली स्लाइड्स याद कीजिए, थर्ड एंड फोर्थ स्लाइड्स। हमने आपको क्या बताया, चुनौती एक ही है लेकिन एक अलग अलग व्यक्ति उसमें अलग अलग अपना रिस्पॉन्ड करते हैं। कोई उसी को देख के ज्यादा पॉजिटिव बन जाते हैं और कोई उसी को देख के ज्यादा नेगेटिव हो जाते हैं। किसी के पास कोई ऐसी परिस्थिति आती है, सोचता है ठीक है, वो मुझे और आगे बढ़ाने के लिए आई है, वो इस ढंग से सोचता है। और एक व्यक्ति सोचता है, क्या ये मेरे पास ही सारा टाइम बातें आती रहती है, मुझे ही स्ट्रगल करना है। ये अपनी अपनी मानसिकता है, और ये मानसिकता कैसी है, इट इज ए लुकिंग फॉरवर्ड माइंडसेट। मुझे आगे देखना है, मुझे पीछे नहीं देखना है, मुझे पीछे से केवल लेसन सीखना है, मुझे आगे बढ़ना है। तो उस मानसिकता को मुझे प्रिपेयर करना पड़ता है। तो रेजिलियंस जो है इट्स ए काइंड ऑफ माइंडसेट, एक प्रकार की मानसिकता जिसका विकास किया जा सकता है, जिसके द्वारा हमारी ग्रोथ होती है, हम आगे बढ़ते हैं। एंड लास्टली इट्स ए एबिलिटी टू बी डिस्कवर्ड। जैसे मैंने आपको पहले बताया, हमारे अंदर वो शक्ति है, वो योग्यता है, उसको अंदर से खोजने की जरूरत है, एक्सप्लोरिंग न्यू होराइजन। हम बाहर का जो कुछ है एक्सप्लोर कर रहे हैं, लेकिन मेरे अंदर कितनी ताकत है, उस न्यूनेस को खोजिए, उस न्यूनेस को जानिए। याद रखिए और विश्वास रखिए, आपका जीवन जहां भी आप रहते हैं, जैसे भी लोगों के बीच में रहते हैं, जैसा भी वातावरण है, परंतु आपका जीवन आपके लिए बहुत एंजॉयबल बन जाएगा अगर आप इस एबिलिटी को डिस्कवर कर लें। तो अभी इस एबिलिटी को हम कैसे डिस्कवर कर सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं, अभी आपके सामने एक गीत के माध्यम से, नृत्य के माध्यम से हमारे सामने हमारे भाई बहन आ रहे हैं और आपके सामने वो प्रस्तुति करेंगे। आप सुनिएगा, आप भी एंजॉय कीजिएगा और आप उनके साथ साथ आप फॉलो कर सकते हैं, आप भी खड़े होकर उनके साथ फॉलो कर सकते हैं। गीत के शब्दों को ध्यान से सुनिएगा। यस यस, एवरीबॉडी कैन स्टैंड। आपने बहुत सारे सेशन भी सुने हैं।
तदवीर ऐसे करो जो तकदीर बदल जाए, मेहनत ऐसी करो जो तस्वीर बदल जाए। जीवन की राहों में चुनौतियां है लाखों, हौसला ऐसा रखो जो महावीर बदल जाए। चुनौतियां है लाखों, हौसला ऐसा रखो जो महावीर बनल जाए। कठिनाइयों से लड़के मुश्किल को आसान बनाओ, सपनों को पाने लिए जोश और जुनून जगाओ। कठिनाइयों से लड़ो के मुश्किल को आसान बनाओ, सपनों को पाने लिए जोश और जुनून जगाओ। तेरी इबादत से ही बदलेगी तेरी किस्मत, जीवन ऐसा बनाओ जो बलवीर बनल जाए। जीवन की राहों में चुनौतियां है लाखों, हौसला ऐसा रखो जो महावीर बदल जाए।
तो सुना आपने, देखिए जब आप देखते हैं, गीत सुनते हैं, मैं ये नोटिस कर रही हूं कि जब इस तरह की प्रस्तुति आपके सामने आती है, आपके चेहरे कितने खिल जाते हैं। और उस समय के लिए जो बैक ऑफ द माइंड कोई बातें होती होंगी वो सब भूल जाते हैं, ऐसा होता है ना। तो ये भी चुनौतियों को हमें अपनी रेजिलियंस से कैसे बदलना है, जब हम इस तरह के गीत सुनते हैं तो वो हमारे में साहस भरते हैं। तो ऐसे ऐसे तरीके जो हमें ब्रह्मा कुमारीज की टीचिंग्स में सिखाए जाते हैं, तो अगर हम उनको भी अप्लाई करते हैं तो भी हम अपने अंदर वो शक्ति ला सकते हैं, वो योग्यता ला सकते हैं, क्योंकि कोई हमें इंस्पायर करने वाला चाहिए होता उस समय। अब हमें कैसे करना है, मुख्य बात आती है कि इस रेजिलियंस को अपने जीवन में कैसे लाया जाए। सबसे बड़ी बात है सेल्फ मोटिवेशन। अगर मनुष्य सेल्फ मोटिवेटेड है, आपको कल पीयूष भाई ने, संतोष भाई ने और अदर जो हमारे स्पीकर्स आए उन्होंने कई चीजें आपको बताई कि अपने आप को सेल्फ मोटिवेट करने के क्या तरीके हैं। लेकिन यहां जिस योग्यता की हम बात कर रहे हैं, जिस स्किल की हम बात कर रहे हैं, जिस क्षमता की हम बात कर रहे हैं, जिस क्षमता के आधार से हम जो भी डिफिकल्टीज, जो भी हार्डशिप्स हमारी लाइफ में आती हैं, उसको ग्रेस और डिग्निटी से हैंडल करते हैं। हम अपनी डिग्निटी नहीं खोते हैं, हम अपनी ग्रेस को नहीं खोते हैं, हम अपने जो हमारे अंदर वो जो हम्बलनेस है, हमारी जो क्वालिटीज है, गुड क्वालिटीज है, हम उसको लूज नहीं करते हैं, उसको बनाकर रखते हैं, लेकिन हम उस डिफिकल्टीज को पार करते हैं। वो जो स्किल है उसको डेवलप करने के लिए मुझे पहले पहले इसमें 5 स्टेप का प्रोसेस है, और वो 5 स्टेप्स कौन से हैं? पहला है क्लैरिटी ऑफ पर्पस। व्हाट इज द पर्पस ऑफ माय लाइफ? आप चाहे हाउसवाइफ हैं, चाहे आप प्रोफेशनल हैं, चाहे आप स्टूडेंट हैं, चाहे आप बिजनेस में हैं, चाहे आप जॉब में हैं, चाहे आप सोशल वर्क में हैं, हमें अपने पर्पस को बहुत अपने सामने रखना चाहिए कि आफ्टर ऑल व्हाट इज द पर्पस ऑफ माय लाइफ। वो अपने लक्ष्य की स्पष्टता। कभी कभी हम उससे डेविएट हो जाते हैं। आज की दुनिया में डिस्ट्रैक्शन के बहुत साधन हैं। देखिए, पहले बच्चों को बोलना नहीं पड़ता था कि बच्चे पढ़ लो, अपना पढ़ाई कर लो, अपना होमवर्क कर लो। आजकल छोटे छोटे स्कूल में जाने वाले बच्चों को भी उनके पेरेंट्स को, उनके मदर्स को या उनकी टीचर को उनके साथ बैठना पड़ता है। क्यों? डिस्ट्रैक्शन बहुत है, और सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन का जो जरिया है वो है मोबाइल, है ना ये? तो आप देखिए, तो मुझे अपने पर्पस को, जो बाहर की चीजें आती हैं उससे डेविएट नहीं होना है। मुझे अपने पर्पस को ध्यान में रखना है कि आफ्टर ऑल मेरी लाइफ का पर्पस क्या है। स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ पर्पस इन अवर सेल्फ विल हेल्प अस इन नेविगेटिंग द अप्स एंड डाउन्स ऑफ लाइफ रोलर कोस्टर। लाइफ क्या है? आपने रोलर कोस्टर देखा है? रोलर कोस्टर क्या करता है? वो ऐसे मूव करता रहता है ना, चलता रहता है, चलता रहता है। तो लाइफ भी क्या है, जीवन भी क्या है, ये भी चलता रहता है, चलता रहता है। उसमें अप्स एंड डाउन्स आते ही हैं। रोलर कोस्टर में क्या है, जो बिल्कुल ऊपर है वो बिल्कुल नीचे भी आता है, और जो बिल्कुल नीचे है वो ऊपर भी जाता है। ऐसे जीवन में चलता है। लेकिन यदि मेरे अपने लक्ष्य की तरफ दृढ़ता है, अपने पर्पस की तरफ दृढ़ता है, डिटर्मिनेशन है, मुझे उसकी स्ट्रांग अवेयरनेस है, तो ये जो भी उतार चढ़ाव आएंगे ना, वो मुझे उससे दूर रखेगी, उसमें उसको पार करने में मुझे मदद करेगी। अगर पर्पस के प्रति मेरी दृढ़ता है तो मुझे लाइफ के उतार चढ़ावों को पार करने में सहयोगी बनेगी। इसलिए क्या करना है, कीप मूविंग टुवर्ड्स योर गोल। आप अपने गोल को सामने रखते हुए आप आगे बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ, और अंदर में एक ये पक्का विश्वास हो, हैविंग ए फर्म बिलीफ दैट व्हाट वी आर डूइंग इज वर्थ वाइल। जो भी हम कर रहे हैं ये सार्थक है, ये यूजफुल है, ये वर्थ वाइल है, क्योंकि मैंने अपना पर्पस कैसे चुना, मैंने अपना पर्पस कैसे बनाया, या हमारा पर्पस कैसा होना चाहिए, ये भी हमें देख लेना है। मैं एक फैमिली पर्सन हूं, मैं एक जॉब करने वाला हूं, मेरा एक कैरियर है और मैं खुद भी हूं, तीनों के लिए एक पर्पस, और वो पर्पस क्या है? देखिए, जब हम फैमिली की बात करते हैं तब हमारा पर्पस क्या होना चाहिए? बेस्ट वर्शन ऑफ माई सेल्फ। मीन्स कहने का भाव क्या है कि बाहर की लोगों को देखकर उनके साथ कंपैरिजन करके उनके कंपटीशन में आके मुझे अपने पर्पस को बदलना नहीं है, मुझे एक ही बात का ध्यान रखना है कि मुझे अपने परिवार में वननेस बनाकर रखनी है, मुझे अपने परिवार में एकता बनाकर रखनी है, वो मुझे करना है। जैसे मैंने आपको पहले ही कहा ना, हम फैमिली फीलिंग की बात करते हैं और वो फैमिली फीलिंग आनी चाहिए। देखिए, बहुत सारे भाई बहन, मैं आपका नहीं जानती हूं ये बात, बहुत सारे भाई बहन जब हमारे डिफरेंट प्रोग्राम्स में यहां आते हैं और जैसे हमारे योग शिविर चलते हैं, नीचे जो हमारा कॉम्प्लेक्स है, कई कॉन्फ्रेंसेस चलती हैं, आप जैसे विंग्स के प्रोग्राम में आते हैं, तो उनको जब यहां पर आते हैं, उनको आकर बहुत ऐसे भाई बहन हैं जो आकर कह के जाते हैं, यहां हमको ऐसा लगा जैसे हम एक परिवार में आ गए। और मैं समझती हूं मैक्सिमम जो इस समय बीकेज हैं, जो बीके फैमिली के हैं, यानी जो बीके फैमिलीज की टीचिंग्स को कोई 50 साल से, कोई 40 साल से, कोई 10 साल से फॉलो कर रहे हैं, उनका पहला अनुभव ही ये है कि जब हम यहां आए तो हमें फैमिली फीलिंग आई, इसलिए हमें अच्छा लगा यहां। तो ऐसे जो हमारे परिवार हैं, जिस परिवार के प्रति हम कमिटेड हैं, जिस परिवार के प्रति मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो मुझे एक अपने साथ ये पर्पस रखना है, मुझे परिवार में एक एकता बनाकर रखनी है, परिवार की जो फीलिंग है बनाकर रखनी है, मुझे अपनी वैल्यूज को स्टिक करना है, मुझे उससे डेविएट नहीं होना है। और दूसरा कैरियर, जब हम कैरियर की बात करते हैं, प्रोफेशन की बात करते हैं, इट शुड नॉट बी ओनली फॉर द अर्निंग सेक, इट शुड बी माई पैशन। सिर्फ ऐसा नहीं है कि मुझे कमाना है इसलिए मैं नौकरी कर रहा हूं, इसलिए मैं जॉब कर रहा हूं, इसलिए मैं बिजनेस कर रहा हूं, घर चलाना है, नो, जो हम कर रहे हैं वो उसमें मेरा इंटरेस्ट होना चाहिए। और जहां पैशन होता है ना, वहां मनुष्य क्या करता है, वो समझो उसकी ड्यूटी नहीं भी है वो काम करने की, तो वो कुछ करके उसमें से कुछ क्रिएटिव निकालता है, कुछ नया नया निकालता है, उसके बियॉन्ड जाके एफर्ट करता है, एंड ही फाइंड्स प्लेजर इन दैट, ही फाइंड्स कंफर्ट इन दैट। तो जो हम कार्य करते हैं वो हमारा क्या होना चाहिए, हमारा पैशन होना चाहिए। आप समझते हैं यहां ज्ञान सरोवर में इतने सारे डेडिकेटेड भाई हैं, ये अपने परिवारों से ही आए होंगे यहां पर, और कोई जबरदस्ती तो उनको लाकर यहां रख नहीं सकते हैं, और अगर जबरदस्ती करें तो वो सेवा भी नहीं करेंगे, तो जरूर उन्होंने उसको सेवा समझा होगा, एंड दैट सेवा इज पैशन, दैट सेवा इज नॉट ओनली फॉर डूइंग सेवा, फॉर सेक ऑफ सेवा, वह मुझे सेवा करनी है, ये उसी प्रकार से नहीं है, उसमें उनका इंटरेस्ट है। और आप देखिए कैसे, जो 3:30 बजे भाई आके अपना कार्य करता है वो चलाता है आके, नहीं तो रोज सवेरे 3:65 बजे 3:30 बजे उठना, बट वो इंटरेस्ट है ना अंदर। इसी प्रकार जो हम जॉब्स करते हैं, वो जो हम प्रोफेशन में करते हैं, दैट शुड नॉट ओनली बी फॉर अर्निंग्स, वो मेरा पैशन होना चाहिए, ये मेरा पर्पस होना चाहिए। आज कितने लोग हैं वो ऐसे जॉब करते होंगे, आमतौर से लोग कहते हैं कि हमारी कंपनी हमको क्या देती है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने हमारे लिए क्या किया, लेकिन हम ये कहते हैं कि हमने ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या किया, वॉट आई कॉन्ट्रीब्यूटेड टू माई ऑर्गेनाइजेशन, अवर थिंकिंग शुड बी लाइक दिस, सो दिस शुड बी माई पर्पस। और थर्ड है यूअर सेल्फ, और जब हम यूअर सेल्फ की बात करते हैं, अपने को नेग्लेक्ट करना ये भी सही नहीं है। अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि मुझे नया क्रिएट करना है, मुझे ये सब करना है तो आई एम अनकंसर्न्ड अबाउट माई हेल्थ, मे बी फिजिकल हेल्थ और मे बी मेंटल हेल्थ, दैट इज ऑल्सो रॉन्ग। जो इसको चाहिए, सेल्फ को जो चाहिए उसको भी देना जरूरी है। जब इस प्रकार का हमारा पर्पस होता है तो लाइफ में बैलेंस आता है। तो सबसे पहला जो स्टेप है वो हमारा क्या है, अगर मुझे रेजिलियंस को बढ़ाना है, अपनी ग्रोथ करनी है, तो मुझे अपने पर्पस की क्लैरिटी होनी बहुत जरूरी है। दूसरा स्टेप है ओपननेस। व्हाट डू आई मीन बाय ओपननेस? विशाल दिल। वो हमारे यहां एक शब्द कहते हैं बेहद की बुद्धि। लिमिट्स है ना, जो हदें हैं, लिमिट्स, गो बियॉन्ड दैट, बी ओपन। मुझे सब लोग सारे एक जैसे मिलने वाले नहीं हैं, इम्पॉसिबल। मेरे ही डिपार्टमेंट में जो काम करते हैं वो मेरे जैसे नहीं होने वाले हैं, डिफरेंट होंगे। शायद उसमें कोई ऐसा होगा जो मुझे बहुत अप्रिशिएट करता हो, शायद कोई ऐसा भी होगा जो मेरी बुराई करता हो, बट बी ओपन टू दैट। क्यों? जब हम ओपन होते हैं ना, ओपन करने से क्या होता है, बहुत सारे विचार हमारे अंदर आते हैं, हमें मालूम पड़ता है। हो सकता है इनिशियली जब मेरी कोई बुराई करता है मुझे खराब लगे, लेकिन धीरे धीरे जब आप सोचने लगते हैं तो आपको मालूम पड़ता है समवेयर आई नीड टू इम्प्रूव। वो आपको कुछ सिखा के जाता है। तो इसीलिए जो आइडियाज लोग देते हैं, विचार जो लोग देते हैं, उसके प्रति ओपन रहो, इससे जीवन के अंदर नवीनता आएगी। और जब नवीनता आने लगेगी तो आप में क्रिएटिविटी आएगी, और जब क्रिएटिविटी आएगी तो यू विल बी एबल टू लर्न मेनी मोर थिंग्स। और जब लर्निंग होती है, और ये ऑटोमेटिकली होती है लर्निंग, लेकिन हमें जब हम रहते हैं जीवन के अंदर, लोगों के साथ चलते हैं, तो हमारी बुद्धि की विशालता होनी बहुत जरूरी है। क्यों? हैविंग ए सेट रूटीन इज गुड फॉर स्टेइंग ऑन टास्क। सेट रूटीन है सोमवार से लेकर रविवार तक, ठीक है ना, सेट रूटीन है सुबह से लेकर शाम तक, हमारा सेट रूटीन बना हुआ है, उस रूटीन से हम चल रहे हैं, और वो ठीक है, कुछ हद तक वो ठीक है। येट इफ वी आर रिजिडली बाउंड टू अवर शेड्यूल वी मे क्लोज अवर सेल्फ। अगर स्ट्रिक्टली उसी के साथ हम बंधे रहे तो याद रखिएगा आप अपने आप को क्लोज कर रहे हैं, आप अपने आप को नैरो कर रहे हैं, आप अपने आप को संकुचित बना रहे हैं। मेकिंग इट हार्डर टू पुश अवर सेल्फ आउट ऑफ अवर कंफर्ट जोन, और आपके लिए बहुत मुश्किल होगा जो आपने दायरा अपने लिए बनाया, अपने विचारों का, अपने ही ओपिनियंस का, अपने आप को एक शेड्यूल में बांध के उससे निकलना, बाहर निकलना आपके लिए बहुत मुश्किल होगा। इसीलिए बीइंग मोर ओपन एंड एडिंग वैरायटी कैन हेल्प अस टू बिकम मोर फ्लेक्सिबल। जितने ज्यादा हम ओपन होंगे तो हमारे जीवन में बहुत वैरायटी आएगी, विभिन्नता हर एक को अच्छी लगती है। देखिए, आपको दो घंटे बैठ के लेक्चर सुनाते रहे तो आपको क्या होगा, अभी भले अच्छा है लेक्चर लेकिन आपको बोर फीलिंग होने लगेगा। लेकिन थोड़ा सा उसके अंदर कुछ एक्टिविटी कराते हैं, कुछ गेम कराते हैं, कुछ गीत बजाते हैं तो आपको अच्छा लगता है। तो इसी प्रकार जितना जितना आप ओपन रहेंगे तो आपका जीवन के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी आती जाएगी। तो आपको इसके लिए इस प्रोसेस से पार करना होगा। इस प्रोसेस को बहुत ध्यान से समझिएगा। देखिए, हम अपने विचारों के, अपने शेड्यूल के कम्फर्ट जोन में रहते हैं। हमारा एक शेड्यूल बना हुआ है मंडे टू फ्राइडे, सैटरडे संडे का वो अलग है, वीकेंड्स हैं, या मंडे टू सैटरडे संडे का अलग है, हम उससे बाहर नहीं निकलते। ये आज संडे है, ये करना है, मंडे टू सैटरडे ये करना है, ये करना है, ये करना है, ठीक है। ये हमारा कंफर्ट जोन बना हुआ है, उसी में ही हमको रहना है. एंड दैट कंफर्ट जोन इज लाइक ए केज, एक पिंजरे के जैसा है. तो जब आप इस प्रोसेस से बाहर निकलेंगे, जो आपने शेड्यूल बांधा हुआ है, तो जैसे कि आप उस पिंजरे से बाहर निकल रहे हैं. और जब कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं तो उस समय एक दूसरा जोन आता है, वो है फियर जोन. जब कुछ नया करने लगते हैं तो थोड़ा फियर आता है. आता है या नहीं आता है? हाँ या ना? आता है कि नहीं आता है? आता है ना? आता है ना? हमें बिजनेस शुरू करना है नया, पहले बिजनेस नहीं था, तो थोड़ा सा अंदर में कुछ इस प्रकार के थॉट्स होते हैं, पता नहीं चलेगा कि नहीं चलेगा, फियर जोन होता है ना. तो उस फियर जोन से हमें बाहर निकलना है. और जब फियर जोन, ये कंफर्ट जोन और फियर जोन से बाहर निकलने में मदद करती है हमारी अंदर की रेजिलियंस, जो हम डेवलप कर रहे हैं. और उसके बाद क्या होता है, नाउ वी आर ए न्यू पर्सन, नाउ वी हैव कम टू ए लर्निंग जोन. हम सक्सेस प्राप्त करते हैं थ्रू रेजिलियंस. तो इसीलिए अपने जीवन के अंदर ओपननेस होना बहुत जरूरी है. अपनी बुद्धि को विशाल बनाओ, अपने सोचने की शक्ति को विशाल बनाओ. लेकिन ये कब होगा? तीसरा स्टेप, जब हमारे जीवन में पॉजिटिविटी होगी, सकारात्मकता होगी. अभी हम आपको एक एक्टिविटी कराते हैं. आप एक उस व्यक्ति को अभी अपने मन में लाइए, उसको विजुलाइज कीजिए. एक व्यक्ति जो नोन है और वो आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता. उसके साथ थोड़ा बहुत जो रिलेशन है उसमें भी बिटरनेस है, ठीक है. और जब भी मिलते हैं बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी बात आर्ग्यूमेंट्स पर ही खत्म होती है, कॉन्फ्लिक्ट ही होता है, ठीक है. आप समझ गए कैसे व्यक्ति को लाना है? सबने समझ लिया? ऐसा व्यक्ति जो आपको अच्छा, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, वो आपको नियर एंड डियर वन भी हो सकता है, वो आपका कोई प्रोफेशन वाला व्यक्ति भी हो सकता है, वो आपका पड़ोसी भी हो सकता है, वो कोई भी हो सकता है, आपको अपने ब्लड रिलेशन वाले भी हो सकते हैं, वो कोई भी हो सकता है. अब आप उस व्यक्ति को सामने लाइए, एक मिनट अपनी आंखें क्लोज कीजिए. पहले मैं आपको प्रोसेस बता देती, फिर मैं जब आपको कहूंगी स्टार्ट तब आपको करना है. आपको अपनी आंखें बंद करनी है, उस व्यक्ति को सामने लाना है, और सामने लाने के बाद मैं 10 काउंट करूंगी, और उसके बाद आपको उस व्यक्ति में कोई अच्छाई ढूंढनी है, कोई गुड क्वालिटी ढूंढनी है, ठीक है. समझ में आ गया सभी को क्या करना है? फाइन. शुड वी स्टार्ट? शुड वी स्टार्ट? ओके. नाउ क्लोज योर आइज. सभी अपनी आंखें बंद करेंगे. क्लोज योर आइज. यस, क्लोज योर आइज. उस व्यक्ति को सामने लाइए. आई एम स्टार्टिंग काउंटिंग. जो भी हिल रहे हैं अपनी आंखें बंद कर लीजिए. उस व्यक्ति को सामने लाइए जिसके साथ आपका जीवन के अंदर कड़वाहट है, वो आपको अच्छा नहीं लगता है. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. अब आप उस व्यक्ति में ढूंढिए. मैं आपको 60 सेकेंड्स दे रही हूं. ढूंढिए उसकी एक अच्छी क्वालिटी. ढूंढ कर निकालिए, उसमें जरूर कोई ना कोई एक अच्छी क्वालिटी होगी। ओवर, ओपन योर आइज। अच्छा, किसने निकाली? मुझे सिर्फ क्वालिटी बताना, व्यक्ति का नाम नहीं चाहिए, व्यक्ति कौन है, उससे रिलेशन क्या है, कुछ नहीं चाहिए। आपने उस व्यक्ति में वो क्वालिटी निकाली, निकल पाई, जल्दी से हो गई या ढूंढने में समय लगा? मुझे एक यही दो ही बातें चाहिए, वो क्वालिटी आपने जो निकाली वो कौन सी है, ढूंढने में समय लगा या जल्दी से ख्याल में आ गया, कौन बताएगा? यस, हाँ, मैं किसी और से पूछना चाहूंगी जो पीछे बैठे हुए हैं। यस, कौन बताएगा? यस यस, इसका मतलब उसमें आपके कोई इसमें क्वालिटी है ही नहीं क्या? क्वालिटी नहीं है क्या? यस यस बोलिए, मालूम पड़ेगा आप कितने ओपन हैं। हाँ यस, खड़े होके बताइए क्या क्वालिटी निकली। आगे आओ थोड़ा, आपने उस व्यक्ति में कौन सी क्वालिटी ढूंढ के निकाली? अच्छा, रात को अगर 12 बजे भी उसको कहेंगे ना तो वो आ जाएगा। वेरी गुड, बहुत अच्छा है। वो ढूंढ के निकाली या जल्दी से आ गई? अच्छा, नहीं, अभी जब आप कर रहे थे, आप उसको पहले से पहचानते हैं, वो तो ठीक है, तो आपको तुरंत याद आ गया या आपको थोड़ा सा प्रेशर देना पड़ा माइंड को? तुरंत याद आ गया। थैंक यू, भाई क्लैपिंग कीजिए इनके लिए। हाँ अच्छा, कोई और बैठ जाइए आप, कोई और बताना चाहेगा? मैं एक और से पूछूंगी समय को देखते हुए। हाँ हाँ बताइए। यस यस, बहन जो हाथ खड़ा कर रही है, खड़े हो जाइए, आगे आ जाइए। हाँ हाँ, नहीं वो पीछे बहन एक हाथ खड़ा कर रही थी। हाँ बोलिए। हाँ आगे आके बोलो। हाँ बोलिए, क्या कौन सी क्वालिटी थी? वेरी क्वाइट, शांत है। तो आपको टाइम लगा ढूंढने में? नहीं ढूंढे, आ गए तुरंत, आ गए, ठीक है, ओके फाइन, बैठ जाइए। अच्छा अब देखिए, हमने एक यहां प्रयास किया, दो दिन से आप यहां एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट में हैं, ठीक है, और आप यही सब कुछ अपने मन में डाल रहे हैं। तो जब हमने ये प्रयास किया, वो व्यक्ति जो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, लेकिन उसमें भी एक क्वालिटी है। देखो उसने कौन सी क्वालिटी कही कि अगर मैं रात को 12 बजे भी फोन करूं तो वो तुरंत आ जाएगा, ठीक है। शायद उसके अंदर बाकी बहुत सारी बातें जो होंगी वो नेगेटिव होंगी, लेकिन ये तो एक अच्छी क्वालिटी है। लेकिन होता क्या है लाइफ के अंदर, हमारा ज्यादातर हमारी मानसिकता ऐसी होती है कि हम उनकी गलतियों को देखते हैं। इसीलिए हमें क्या करना है, डेवलपिंग ए माइंडसेट दैट फॉस्टर सक्सेस। अपनी वो मानसिकता बनानी है जिससे मेरी ग्रोथ हो, जिससे मुझे सफलता मिले। पॉजिटिविटी इट्स नॉट ए ब्लाइंड फेथ, आगे मैं आपको बताती, इट्स नॉट ए ब्लाइंड फेथ। पॉजिटिविटी वो एक मानसिकता है जिससे मुझे जो मेरे कदम सक्सेस की ओर, सफलता की ओर बढ़ाती है। और दूसरा, आइडेंटिफाई एंड लेवरेज योर स्ट्रेंथ्स। आप अपनी ताकत को पहचानो। सकारात्मकता एक ताकत है जो हमारे अंदर है, सबके अंदर है, आपको बता दिया गया है कि कौन सी आपके अंदर वो सकारात्मकता है। आप स्नेह हैं, आप सहयोग हैं, आप शांत हैं, आप शक्ति हैं, आप प्योर हैं, ये आप हैं, ये मेरे अंदर है। उस ताकत का फायदा लेना, ये है पॉजिटिविटी। क्यों? इट डज नॉट इग्नोर द डिफिकल्टीज एंड प्रॉब्लम्स पीपल फेस, पॉजिटिविटी का मतलब ये नहीं है कि हम मुश्किलों को इग्नोर करते हैं, उनको नज़रअंदाज करते हैं, हम समस्याओं को नज़रअंदाज करते हैं। देखिए, मनुष्य के जीवन में मुश्किलें आती हैं, बहुत सारी बातें आती हैं, बट इंस्टेड ऑफ जस्ट कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन वॉट इज रॉन्ग, इंफेसाइज ऑन डेवलपिंग देयर स्ट्रेंथ्स, हम उस पर फोकस नहीं करते, ये गलत है, ये समस्या है, ये हार्डशिप है, ये डिफिकल्टी है, ये प्रॉब्लम है, हम उसके ऊपर एकदम फोकस नहीं करते। लेकिन हम किस पर फोकस करते हैं कि मुझे कैसे एफर्ट करके, अपनी ताकत को अप्लाई करके उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, उस डिफिकल्टी से कैसे बाहर निकलना है, ये हमें करना है। दिस इज कॉल्ड पॉजिटिविटी। अब आप देखिए, कुछ हुआ, कोई दुर्घटना घटी, अब दुर्घटना का ही वर्णन करते जा रहे हैं, अरे आप ये देखो ना कि अभी दुर्घटना हो तो गई, अब क्या करना है, व्हाट इज नाउ आई हैव टू डू, दिस इज पॉजिटिविटी। पॉजिटिविटी ने उस दुर्घटना को इग्नोर नहीं किया, वो है, उसको स्वीकार किया, लेकिन अब उससे निकलना कैसे है बाहर। सो इट इज इम्पॉर्टेंट टू लुक एट वॉट इज स्ट्रॉन्ग इन एन इंडिविजुअल, नॉट जस्ट वॉट इज रॉन्ग। हम लोगों के साथ संबंध संपर्क में आते हैं, केवल यही देखना इम्पॉर्टेंट नहीं है कि उसके अंदर गलत क्या है, गलत है, ठीक है, वो जल्दी से टेम्पर लूज कर लेते हैं, नो प्रॉब्लम है, ये समस्या है, ये प्रॉब्लम है, लेकिन इम्पॉर्टेंट क्या है देखना, उसके अंदर स्ट्रांग क्या है, उसके अंदर पॉजिटिविटी क्या है, उसकी स्ट्रेंथ्स कौन सी हैं, केवल उसकी वीकनेसेस के ऊपर नहीं हमें फोकस करना है। दिस इज कॉल्ड पॉजिटिविटी एंड दिस इज व्हाई आई सेड इट इज नॉट ए ब्लाइंड फेथ। किसी ने रात को कहा दिन है तो हम कहें हाँ जी दिन है, अभी सितारे चमक रहे हैं, सितारे दिख तो नहीं रहे और हम कहें जी हाँ सितारे दिख रहे हैं, दिस इज नॉट पॉजिटिविटी। जो रियलिटी है वो रियलिटी है, लेकिन हमें क्या करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, एक तरीका अपनाना होगा। सबसे पहले कौन सा तरीका, ये 3-step प्रोसेस, स्टॉप, गिव ए पॉज। पॉज करने से क्या होता है, जो चल रहा होता है वो स्टॉप हो जाता है, ठीक है। देन रिप्लेस, उसको रिप्लेस करो। ताला बंद था, चाबी लगाई, खुल गया, ठीक है। अब रिप्लेस किससे करेंगे, मन में बहुत सारे विचार आ रहे हैं ना, और उसके कारण व्यवहार गलत हो रहा है, तो पहले तो मैंने स्टॉप किया, पॉज किया, पॉज करने के बाद अब मुझे रिप्लेस करो, उसको बदली करो। बदली किससे करेंगे, थॉट से ही तो बदली करेंगे, और वो थॉट क्या है, वो है पॉजिटिविटी। कुछ अच्छा सोचो। कई कहते हम क्या अच्छा सोचे, ये तो कर ही नहीं सकता, ये हो ही नहीं सकता, इट इज नॉट पॉसिबल। नो, परमात्मा ने हमें ये सिखाया है, क्या सिखाया है, कि हमेशा कोई कितना भी गलत भावना वाला हो, आपकी शुभ भावना उससे ज्यादा इंटेंसिटी की हो, उससे ज्यादा डिग्री की हो, जो आपकी शुभ भावना उसकी अशुभ भावना को बदल दे। ये हमारी टीचिंग्स हैं जो हम प्रैक्टिस करते हैं। तो हम क्या ये कर सकते हैं, आप कहेंगे कि शायद आप तो यहीं पर रहते हैं कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, हमारे भी तो संबंध संपर्क में ढेर लोग आते हैं ना, और ये घर परिवार में रहते भी कर सकते हैं। तो इसलिए पॉजिटिविटी से रिप्लेस उसको हमें कैसे करना है, ये इसका स्टेप है। हाँ, मैं ये जरूर इस बात से सहमत होंगी और आपको ये कहूंगी कि चेंजिंग योर आउटलुक विल नॉट हैपन ओवरनाइट। ये कोई एक दिन का या एक रात का प्रोसेस नहीं है, ये बदलना कोई इतना जल्दी से नहीं हो जाता है। आप जैसे यहां पर 3 दिन कॉन्फ्रेंस करने के बाद जाएंगे, आप अपने अंदर शायद कुछ थॉट्स क्रिएट करेंगे, मुझे जाके ऐसा करना है वैसा करना है, और वहां कुछ दिनों तक उस उमंग उत्साह में रहेंगे और कुछ दिनों के बाद आप देखेंगे फिर से आप अपने पाथ से जो सोच कर आए थे उससे डेविएट हो गए, उससे डिस्ट्रैक्ट हो गए, तो आपको लगा कि जाने का क्या फायदा हुआ, तो फिर भी वैसा का वैसा ही है। लेकिन याद रखिए, ये कोई एक दिन का या एक रात का प्रोसेस नहीं है, इसको समय लगता है। जैसे वो कहते ना हिंदी में, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, या इंग्लिश में कहते हैं प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। तो हमें प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो समटाइम्स एक थॉट चलता है, एक छोटा सा बच्चा जब उसको स्कूल में डालते हैं तो एक साल तक उसको अल्फाबेट का ही ज्ञान देते रहते हैं, ए बी सी डी, है ना, उसको अल्फाबेट से बताते रहते हैं, अलग अलग तरीके से उसकी पहचान उसको देते हैं। अब आप सोचिए, आप स्पिरिचुअल नॉलेज को सुन रहे हैं, उस नॉलेज को प्रैक्टिस करने में और वो जीवन का हिस्सा बनने में थोड़ा तो वक्त लगेगा ना, थोड़ा तो मुझे अभ्यास करना होगा। तो इससे ये कैसे होता है, चेंजिंग एन आउटलुक विल नॉट हैपन ओवरनाइट, बट विद प्रैक्टिस इवन ए लाइफ लॉन्ग पेसिमिस्ट कैन लर्न टू फाइंड द पॉजिटिविटी एंड बिल्ड हिज रेजिलियंस अगेंस्ट एनी एडवर्स सिचुएशन। कोई कितना भी व्यक्ति पेसिमिस्टिक होगा ना, जो होते ना जो हमेशा नीचे का ही सोचते हैं, नीचे के थॉट्स जिनके होते हैं, जो पेसिमिस्टिक होते हैं, आशावादी नहीं होते, निराशावादी जैसे होते हैं, अगर वो प्रैक्टिस करे, प्रैक्टिस करने से ऐसा व्यक्ति भी चेंज हो सकता है और अपनी रेजिलियंस को बिल्ड कर सकता है, जिससे वो आने वाली कोई भी चैलेंज है, कोई भी एडवर्स सिचुएशन है, उसको वो पार कर सकता है। और फोर्थ स्टेप है टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत इंपॉर्टेंट है, टेकिंग एक्शन टुवर्ड वन्स ओन वेल बीइंग। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या है, मैं मेरे परिवार का रिस्पॉन्सिबल हूं, मैं इस डिपार्टमेंट का रिस्पॉन्सिबल हूं, मैं इस ऑर्गेनाइजेशन का रिस्पॉन्सिबल हूं, राइट, यू आर रिस्पॉन्सिबल। वॉट डज रिस्पॉन्सिबल मीन्स, फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स योर सेल्फ। जो मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में देखना चाहता हूं, जो मैं अपने परिवार में देखना चाहता हूं, जो मैं पास पड़ोस में देखना चाहता हूं, पहले मैं खुद करूं उसको, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, आई हैव टू एक्सेप्ट दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी। और वही रिस्पॉन्सिबिलिटी हम स्वीकार नहीं करते हैं, है ना, ऐसा ही होता है ना आमतौर से, क्या होता है, आई एम रिस्पॉन्सिबल, मुझे सबको ठीक रखना है, लेकिन सबको ठीक रखने से पहले अपने को ठीक रखना है, दिस इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसको हम कहते हैं टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से क्या होगा, रेजिलियंट पीपल आर करेजियस। रेजिलियंट जिसको लचीलापन कहते हैं, जो फ्लेक्सिबल होते हैं, तो जो ऐसे लोग होते हैं वो हिम्मतवान होते हैं। दे ओवरकम फियर एंड अनसर्टेनिटी। जो आज जीवन के अंदर बहुत अनसर्टेनिटी आ गई है, कुछ भी निश्चित नहीं है, तो उसको भी ओवरकम करते हैं, फियर को भी ओवरकम करते हैं, और अपने वेल बींग के लिए वो खुद जिम्मेवार अपने आप को समझते हैं। एंड टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी empowers them to work through with their fears instead of allowing anxiety to stop their momentum। जब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने आप को जवाबदार समझते हैं, वो इतने सशक्त हो जाते हैं, समझो भय भी आया, कोई हार्डशिप भी आई, वो उसको पार कर लेते हैं। ऐसा नहीं है कि उनके जीवन में उन सबको देख के एक प्रकार की एंग्जाइटी आ जाए और जो उसके आगे बढ़ने की जो गति है वो उसको रोक दे, ऐसा नहीं होता है। इट लीड्स टू एक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग इंस्टेड ऑफ ओवर एनालाइजिंग एंड मेंटल पैरालाइजिंग। देखिए, आमतौर से क्या होता है, जब फियर आता है या हम दूसरों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, कभी कभी हमारा माइंड भी वर्क नहीं करता, इतने मेंटली हम टायर्ड हो जाते हैं और उसके बाद फिजिकली भी टायर्ड होते हैं, क्योंकि माइंड बहुत ज्यादा सोचता है। ये ध्यान रहता है, मैं रिस्पॉन्सिबल हूं ना ऑर्गेनाइजेशन का, मैं रिस्पॉन्सिबल हूं ना डिपार्टमेंट का, नहीं, पहले अपने को ठीक करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। जैसे लाइट हाउस, बी ए लाइट हाउस ऑल द टाइम। लाइट हाउस क्या करता है, रिगार्डलेस ऑफ द वेदर एंड द मूड ऑफ द सी, इट रिमेन्स ए लाइट हाउस। सी में तूफान आए, कुछ भी आए, कैसा भी मौसम हो, लाइट हाउस ही रहता है। उसका जो काम है वो वही काम करता रहता है। बींग रेजिलियंट मीन्स बींग एबल टू बी हु यू आर एंड टू बी ए लीडर ऑल द टाइम लाइक ए लाइट हाउस। हाँ, तो हमें अपने पर फोकस करना है और हमें अपने जीवन को लाइट हाउस के जैसा बनाना है। एंड लास्ट इज, ये सब कब आएगा, वो है ऑब्जर्विंग साइलेंस। एक सवाल है आपसे और वो सवाल क्या है, इफ साइलेंस इज साइलेंट, इफ साइलेंस इज साइलेंट, इज इट ए रेस्टिंग स्टेशन फॉर पावर हाउस? इफ साइलेंस इज साइलेंट, इज इट ए रेस्टिंग स्टेशन और ए पावर हाउस? सोचिएगा, मैं अभी नहीं पूछती हूं, इसके वेरियस आंसर्स हो सकते हैं, लेकिन इतना जरूर कहूंगी, जब आप साइलेंस में हैं, देन यू बिकम लाइक ए पावर हाउस, यू जनरेट एनर्जी, यू इंस्पायर पीपल थ्रू एनर्जी। और वो साइलेंस क्या है? साइलेंस इज अ रिमार्केबल वे टू फाइंड सॉल्यूशंस, गेन न्यू इंसाइट्स, बिल्ड रिलेशनशिप्स, एनहेंस रेजिलियंस, सो ऑब्जर्व साइलेंस। बहुत अच्छा तरीका है समाधान ढूंढने का, नया दृष्टिकोण बनाने का, संबंधों को बनाने का, रेजिलियंस को, अपनी शक्ति की वृद्धि करने का। इसीलिए साइलेंस ऑब्जर्व कीजिए, साइलेंस जीवन में लाइए। कैसे, वो हम अभी देखते हैं। साइलेंस इज वेयर वी अलाउ अवर माइंड टू क्रिएट स्पेस इनसाइड, वेयर वी गिव इम्पोर्टेंस टू अवर फीलिंग्स। साइलेंस क्या है? जब हम उस साइलेंस में चले जाते हैं तो आई बिगिन टू क्रिएट स्पेस इनसाइड। अभी हम करेंगे ये, आई क्रिएट स्पेस इनसाइड, जो अभी क्लोज्ड है वो ओपन होगा साइलेंस से। ऑब्जर्विंग साइलेंस वी लर्न टू डिटैच फ्रॉम द डिस्टर्बेंसेज ऑफ द एक्सटर्नल वर्ल्ड एंड गेन क्लैरिटी ऑन व्हाट ट्रूली मैटर्स। जैसे साइलेंस में चले जाते हैं, जो आउटर डिस्टर्बेंस है, जो आउटर सराउंडिंग्स है, हम उससे अपने आप को डिटैच करते हैं, उससे न्यारा हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। और अब हम किस पर हमारा ध्यान होता है, क्या इस समय महत्वपूर्ण है, इस समय मुझे क्या करना है, क्या महत्वपूर्ण है, वो स्पष्ट मेरे सामने होता है। और इसीलिए साइलेंस क्या करती है कि एबिलिटी टू रिमेन कंपोज्ड एंड रेजिलियंट इवन एमिडस्ट कैओस। कितना भी कैओस हो बाहर, अगर हम साइलेंस में चले गए, That doesn't matter, बाहर की disturbance, हम internally compose हो जाते हैं, calm and quiet हो जाते हैं। Incorporating moments of silence into our daily routine can be transformative। अगर हम अपने जीवन के अंदर ये silence के moments को incorporate कर दें अपने daily routine में, अपने schedule में, तो आपको बहुत फायदा हो सकता है। इसलिए आज मैं आपको एक तरीका बताने जा रही हूँ, जिस तरीके को आप साथ लेकर जाइएगा, और जो आज का विषय है, अगर आपने इसको फॉलो कर लिया तो सारा विषय आपकी जीवन का एक हिस्सा बन जाएगा ये। और वो क्या है, टेकिंग मिनी ब्रेक्स। मैं यदि आप में से किसी से भी पूछूं तो हरेक ये कहेगा मुझे वक्त नहीं मिलता। लेकिन आपको वक्त निकालना होगा। वो वक्त कैसे निकलेगा, आप स्मॉल स्मॉल ब्रेक्स लीजिए। आप कॉरिडोर में जाते हैं, आप सीढ़ियां चढ़ते उतरते हैं, आप बीच बीच में समझो ब्रेकफास्ट लेने के लिए जाते हैं, मील लेने के लिए जाते हैं, आप थोड़ा सा अपने को फ्रेश करने जाते हैं, वहां आप मिनी ब्रेक्स लीजिए। कार्य करते करते आपको एक असाइनमेंट मिला हुआ है, असाइनमेंट आपका पूरा हो गया, नाउ यू हैव टू शिफ्ट टू द अदर असाइनमेंट, यू कैन टेक ए मिनी ब्रेक। बहुत सारे ऐसे हैं, आप अपने लिए अपने आप फाइंड आउट कीजिए वो कौन सा मिनी ब्रेक है, कहां मुझे वो मिनी ब्रेक मिल सकता है। हमारी एक दादी जी हुआ करती थी और वो कहा करती थी, आप और कुछ नहीं, आप पानी तो पीते हैं, आप चाय तो पीते हैं, उसी समय वो मिनी ब्रेक ले लीजिए। और इस मिनी ब्रेक लेने से क्या होगा? सेट असाइड स्पेसिफिक टाइम ड्यूरिंग योर वर्क डे फॉर शॉर्ट ब्रेक्स, जो हमने आपको अभी बताया. इवन ए 1 मिनट ब्रेक कैन मेक ए सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन योर एनर्जी एंड फोकस लेवल्स. आप चाहिए तो एक्सपेरिमेंट करके देखिएगा अपने अपने वहां जाकर, यहां भी कर सकते हैं. बहुत बिजी है, 1 मिनट का ब्रेक ले लीजिए और जो हम आपको बताएंगे वो करिए. देखिए आपके एनर्जी लेवल में, आपके फोकस लेवल में अंतर आता है नहीं, यू विल फाइंड ए डिफरेंस. और ये जो मिनी ब्रेक्स हैं ये क्या करते हैं, बाय टेकिंग रेगुलर ब्रेक्स, डिसकनेक्टिंग फ्रॉम द कॉन्स्टेंट डिमांड्स ऑफ वर्क एंड प्रायोरिटाइजिंग अवर मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ, वी नॉट ओनली प्रिवेंट लॉस्ट प्रोडक्टिविटी, बट ऑल्सो लीड मोर फुलफिलिंग लाइव्स. अगर आप ये मिनी ब्रेक्स लेंगे किससे हटके, जो बहुत सारे हमें काम करने हैं, जो डिमांड्स हैं, थोड़ा सा उस डिमांड से हटकर और अपने फिजिकल और मानसिक हेल्थ को महत्व देते हुए आप ये मिनी ब्रेक्स लेंगे तो जो प्रोडक्टिविटी होती है, जो मतलब हम देखना चाहते हैं, रिजल्ट देखना चाहते हैं, वो रिजल्ट और ज्यादा अच्छा होगा और साथ साथ अपना आप जीवन एक संतुष्टदायक जीवन व्यतीत कर सकेंगे ये मिनी ब्रेक लेने से. यू फील फुलफिलिंग. तो वो मिनी ब्रेक्स कैसे लेनी है, उसके अंदर क्या करना है, हम वो अभी करेंगे. कैसे करना है मैं आपको छोटी छोटी चीज बताती हूं, फिर हम करते हैं. जैसे मैंने एक वैल्यू ली और समझिए हम पीस लेते हैं, और पीस याद रखिएगा हम शांति, वो शांति नहीं कहते, एब्सेंस ऑफ साउंड नहीं कहते, हम जो शांति कहते हैं ये शांति एक शक्ति है और ये शांति जो है एक गुण है और ये शांति जीवन में खुशी लाती है ऑटोमेटिकली, हम उस शांति की बात करते हैं. और ये मेरा अपना अंदर है, सिर्फ वो अभी लेटेंट फॉर्म में है. ठीक है, अब मुझे मिनी ब्रेक में क्या करना है, एक थॉट को क्रिएट करना है और उससे रिलेटेड 3-4 थॉट्स, 1 मिनट में हो जाएंगे वो, हम करके देखते हैं. ऐसे ही कभी मैं सोच सकती हूं पॉजिटिव, पॉजिटिव में आई एम पॉजिटिव, पॉजिटिविटी इज अ ट्रेट ऑफ माई पर्सनैलिटी, आई सी पॉजिटिविटी इन एवरीवन, एवरीवन इज पॉजिटिव. अब वो मिनी ब्रेक जो मैंने लिया, मैंने तो आपको फास्ट थोड़ा बोला, वो जो मिनी ब्रेक आपने लिया वो 1 मिनट में, अगर आपको लगता है आप अपनी आईज क्लोज कर लीजिए, एकदम अपने अंदर चले जाइए, अंदर एक स्पेस क्रिएट होगा और क्रिएट करके ये 3 या 4 वाक्य, ये 3 या 4 ये जो अफर्मेशंस कहिए, पॉजिटिव स्टेटमेंट्स कहिए या अपने ही गुण कहिए, उनको आप दोहराइए, देखिए आपको क्या होता है. तो चलिए करें, अभी हमारे पास 3 मिनट और है. तो हम सभी सीधे होके बैठ जाएंगे और ये जो हम आपको बता रहे हैं इसका बेनिफिट लीजिएगा, केवल सुनने तक सीमित मत रखिएगा, इसका बेनिफिट लीजिए, आपको बहुत उपयोगी सिद्ध होगा. चलिए सभी अपने हाथ में जो कुछ भी है वो छोड़ दीजिए, सीधे होके बैठ जाइए कुर्सियों पे, नॉट टू कंफर्टेबल, ऐसे इस तरह से नहीं बैठिए, सीधे होके बैठिए. यस, अपने हाथों को रेस्टिंग पोजीशन दे दीजिए, मे बी ऑन योर नीज, एकदम रेस्टिंग पोजीशन, बी कंफर्टेबल, टेक ए डीप ब्रीथ, एक लंबी श्वास लीजिए, फील रिलैक्स्ड इन योर माइंड. फोकस कीजिए स्वयं की थॉट एनर्जी को, स्वयं के मस्तक के मध्य. स्वयं को अपने सत्य स्वरूप में देखते हुए विचार दीजिए। पीस, मैं शांत स्वरूप हूं, यस आई एम पीस। मैं शांत हूँ, ये मेरा इनहेरेंट नेचर है। शांति मेरा अपना स्वभाव है। ये शांति मेरी शक्ति है। इस शांति के द्वारा मुझे अपने चारों ओर पीसफुल वाइब्रेशन रेडिएट करने हैं। चारों ओर शांति के प्रकंपन बिखेरने हैं। आई एम पीस, I am peaceful. Om Shanti, Shanti, Shanti. Could you feel that peace? हाँ, आप करके देखिए। मैंने आपको केवल शांति का बताया, ऐसे सभी जो हमारे गुण हैं, जो पॉजिटिव क्वालिटीज हैं, उनको लेकर आप कर सकते हैं और आपका एनर्जी लेवल बढ़ जाएगा। आपको लगेगा हम री एनर्जाइज हो गए और आपका वर्क के प्रति फोकस जो है वो बढ़ जाएगा। थैंक यू। ओम शांति।